Ancient day. 16th January 1975. विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त। स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं, तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं, या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए? यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं, तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण? क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। इसलिए 16th जनवरी 1975 की क्या सुना? विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन की अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं, तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं, या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए? यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी अचल के संकल्प है, तो विनाश अर्थ निमित्त बनी आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, उसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते, तब तक विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण? क्योंकि ज्वाला रूप ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी समझते हो करते हैं, तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? क्या कहा? संपूर्ण परिवर्तन। संपूर्ण परिवर्तन कैसे हो? हम विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं। कभी ज्वाला कभी शीतल यह स्वरूप ना हो। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात संपूर्ण परिवर्तन किसे कहेंगे? संपूर्ण परिवर्तन पुराना कुछ भी नहीं हो। उदाहरण जैसे कि अग्नि, अग्नि में कोई वस्तु डाल दी जाए तो नष्ट हो जाती है, फिर वो पुरानी जैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी। आग में डालने, अगर ये पेपर को आग में डाल दो, तो जो आग से निकलेगा वो वापस ये पेपर नहीं बन सकता। तो आग में पांचों ही तत्वों में आग एक ऐसी वस्तु है। एक तत्व ऐसा है कि जिसमें वस्तु जाते ही संपूर्ण परिवर्तन को प्राप्त हो जाती है। बाकी तत्वों में भी हो सकती है, परंतु आग में सबसे ज्यादा। उस दिन मुरली में था ना, लगन की अग्नि, अग्नि चाहिए अग्नि। आग अगर है तो ही परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ तो परिवर्तन कौन सी चीज की बात चल रही है? संस्कार, स्वभाव, संकल्प, ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्ति के स्वभाव का संपूर्ण परिवर्तन, ये कैसे हो? तो है, एक व्यक्ति का स्वभाव पूरा ही बदल जाए, पहचान नहीं है कि ये वो है, ये कैसे हो? अग्नि में डालो तो परिवर्तन हो जाएगा, वो तो है, परंतु सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जो गलतियां की है उसका पश्चाताप, चलो वो भी एक स्टेप है, प्रायश्चित, पश्चाताप से भी ऊपर प्रायश्चित, और दृढ़ संकल्प, बहुत सारी चीजें हो सकती है या स्टेप्स हो सकती है। सबसे पहला तो ये है कि स्वयं को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहली प्रक्रिया है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। मेरा स्वभाव क्या है, मेरे परफेक्शंस क्या है, स्पेशलिटीज क्या है, वर्चुज क्या है, इम्परफेक्शन क्या है, मुझ में दोष क्या क्या है, क्या कहाँ खोट है, संकल्पों में है, स्वभाव में है, संस्कार है, क्या है, कहाँ मेरी कमजोरी और कहाँ मेरी परफेक्शंस भी कहाँ है और कमजोरी भी कहाँ है, ये दोनों भी चीजें है। Knowing oneself मतलब खुद को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो संपूर्ण परिवर्तन यदि करना है तो फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अपने आप को जानना, ये पहला। कैसे जानेंगे? थ्रू मुरली, मुरली के द्वारा, क्योंकि मुरली एक आईना है, ज्ञान, ज्ञान दर्पण है, जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं कि कहां क्या है और कहां क्या नहीं है। एक तो ये सेकंड स्टेज, अपने कर्तव्य को स्मृति में लाना। अच्छा, तो जो हमसे आगे है उनसे कंपेयर करना, और वो इस तरह से कंपेयर करना कि उन्होंने क्या किया तो वहां तक पहुंचे। जैसे किसी को रोने की बहुत आदत है बात बात पर, वो उन लोगों को देखेगी जिन्होंने रोना जीत लिया है, जिनको कभी रोना नहीं आता है, उनके साथ बहुत गलत गलत चीजें होती है, परंतु उनको रोते हुए कभी नहीं दिखा, जबकि हम, हमारे साथ किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया और हम रोना चालू हो गए। तो जो हमने कमी है उन आत्माओं को देखना जिन्होंने इसको जीत लिया है, पॉजिटिव कंपैरिजन, जिन्होंने पॉजिटिव कंपैरिजन करना। वैसे कंपैरिजन करेंगे तो दुखी होंगे, निगेटिव कंपैरिजन करेंगे तो कि इसके पास तो ये है, मेरे पास है ही नहीं, इसको ये आता है मुझे नहीं आता, तो और दुखी होंगे। पॉजिटिव कंपैरिजन अर्थात कैसे मैं उसको कहूं, मुझे भी आना चाहिए, वो उसके पास है और उसने अगर पाया तो मैं भी पा सकता हूं। एक व्यक्ति अगर इस सृष्टि का कुछ पाता है तो दूसरा व्यक्ति भी पा सकता है, अगर एक ने करके दिखाया तो दूसरे में भी उतनी क्षमता है कि वो करेगा। तो पहले तो अपने आप को जानना, स्टेप्स कहने की बजाय अलग अलग पॉइंट्स हम कह सकते हैं, स्टेप्स भी है पर चलो पॉइंट्स हम निकाल रहे तो पॉइंट्स के द्वारा इसको कहेंगे। पॉजिटिव कंपैरिजन करना दूसरा, तीसरा क्या करें कि जिससे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? धक्का चाहिए, एक जबरदस्त एक धक्का चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, डीप रियलाइजेशन। जब तक वो डीप रियलाइजेशन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, घोर कुछ भी हो सकता है, वो डीप रियलाइजेशन कि ये जो चीज है इसके वजह से बहुत मुझे नुकसान हुआ है, या ये गलती के वजह से, ये कमजोरी के वजह से बहुत मुझे नुकसान हो रहा है, या बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे कहा कोई भी एक धक्का जब मिलता है तब व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे वो उस दिन भी कहा था ना वाल्मीकि का, बहुत जबरदस्त उसको धक्का मिला कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ माँ के लिए, बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, घर जाके पूछता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें आप वो शेयर करते हो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या भागीदार हो मेरे जो पाप। वो कहते हैं कि हमने तो तुमको कहा ही नहीं इस तरह चोरी करो, डाका डालो, वो तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए तुम जिम्मेवार हो। उसको एकदम से धक्का मिला, नहीं तो एक डाकू कैसे बदल जाएगा। धक्का मिल बच्चों से, पत्नी से, माँ बाप से, एक धक्का और तुरंत मार्ग बदल गया। तो डीप रियलाइजेशन, अगर धक्का नहीं मिल रहा है और डीप रियलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए एकांत चाहिए, चिंतन चाहिए, गहरा एकांत, बहुत गहरा एकांत। एकांत में ही हम स्वयं को देख सकते हैं, खोज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मन में ऐसी है जो अंधकार में है, वो दिखाई नहीं देती है भीड़ में। एकांत चाहिए, स्थूल एकांत। उस एकांत में ही स्वयं को देखा जा सकता है। तो डीप रियलाइजेशन के लिए एक तो धक्का चाहिए और दूसरा एकांत चाहिए। और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? डीप ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण परिवर्तन। अपना जो लक्ष्य है उसको सामने रखो। संडे की मुरली, क्या बनने आए थे और क्या बन रहे हैं? क्या बनने आया था और क्या बन रहा हूं? क्या करने आए थे और क्या कर रहा हूं? खोया क्या, पाया क्या, जगाया क्या? ये प्रश्न है रोज के, रोज स्वयं से पूछना है। क्या बनने आए थे, क्या बन रहा हूं? क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं? क्या सोचने आया था, क्या सोच रहा हूं? क्या बोलने आया था, क्या बोल रहा हूं? क्या पाने आया था और क्या गवा दिया? पाया क्या, गवाया क्या? लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य की जैसे ही विस्मृति हो जाती है, इसके लिए ऐसे लोगों का संग चाहिए जो उस लक्ष्य के प्रति सजग है। इस परिवार में भी जो परिवार में तो है परंतु सजग नहीं है, लक्ष्य विस्मृत हो चुका है, व्यर्थ की बातों में उलझ गए, वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे संसार के लोग, जैसे ज्ञान में ही नहीं है। इस तरह की वार्तालाप और चर्चाएं चालू है यहां रहते भी। तो संपूर्ण लक्ष्य की विस्मृति जब हो जाती है तो साधारणता आ जाती है। इसके लिए लक्ष्य की स्मृति कैसे याद दिलाएंगे बार बार? अध्ययन से। इसके लिए अध्ययन का बहुत जरूरी है। हर एक को डीप स्टडी करनी है, हर एक को रोज। मुरली भी और मुरली के अलावा भी ज्ञान से संबंधित सारी चीजें, जीवन की स्टडी, मुरली की स्टडी, दूसरों के जीवन की भी स्टडी, स्टडी पर चिंतन नहीं, अध्ययन। अचानक अटेंशन आ जाए। अटेंशन जो होता है ना, ध्यान, अवधान, वो सोया हुआ रहता है, अचानक वो जागृत हो जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ माइंड को निरंतर बिजी रखना होता है, नहीं तो वो अटेंशन खो जाता है। एक राजकुमार एक ज़ेन मास्टर के पास आता है, ज़ेन मास्टर के पास एक राजकुमार, और वो कहता है कि मुझे धर्म की शिक्षा दो। और वो राजकुमार बहुत अहंकारी होता है, बहुत ज्यादा अहंकारी। तो ज़ेन मास्टर उसको कहता है कि तुम्हें दो चीजें करनी होगी, एक चीज करनी होगी, तुम्हें चेस खेलना तो आता है। वो कहता है मैं मास्टर हूँ चेस में, तो ये जो मेरे जो दूसरे शिष्य है बेचारे, उनको तो थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा है नहीं, बचपन से यही है, सन्यासी बन गए मेरे पास, तो तुमको उनके साथ चेस खेलना है, किसी एक व्यक्ति के साथ, और जो भी हार जाएगा उसका सर काट दिया जाएगा, ऐसी शर्त रखता है। तो वो तो प्रिंस जो होता है वो तो बहुत अहंकारी होता है कि उसे तो जीतना ही है, क्योंकि वो जीता ही है हमेशा, कभी हारा नहीं है, तो खेलने बैठता है उसके साथ। और देखता है वो सामने का शिष्य एकदम युवा, वो भी युवा, वो दोनों ही युवा, पर देखता है उसको तो कुछ भी नहीं आता है चेस की, कोई भी चाल उसको ढंग से आती नहीं है। और फिर वो एकदम मन में संकल्प चलने लगते है कि मैं यहाँ किस लिए आया था? ज्ञान प्राप्त करने, धर्म की शिक्षा लेने। अगर मैं जीत गया तो बेचारा ये तो गया, सामने का जो शिष्य है वो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी मेरे वजह से। तो एकदम से मन थोड़ा उसका परिवर्तन होता है और वो सोचता है कि मैं इस खेल को हारूंगा, अब इस खेल को मुझे हारना है। परंतु हारना तो कभी उसने सीखा नहीं था, तो हारने के लिए उसे बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ा, कैसे मैं हारू? जीतना तो आसान है पर हारना, गलत चाले चलना जानबूझ के। तो वो करते रहता है। तो गुरु बीच में आता है, कहता है बस स्टॉप कर दो, यहां से तुम्हारे अंदर दो भाव यहां जागृत हुए जो अब तक कभी नहीं हुए थे। एक तो रहम, उसने कभी सीखा ही नहीं था रहम, और दूसरा अटेंशन। अचानक से एक अटेंशन जागृत हो गया, ऐसा अटेंशन कभी था नहीं उसके पास। तो अटेंशन जो होता है वो खोया हुआ रहता है, दबा हुआ ढका हुआ रहता है। जब तक हमको कहा नहीं जाए, जब तक अगर किसी को ये कहा जाए कि इस पर बोलना है, पैराग्राफ पर एक है वैसे ही पढ़ना, एक है बोलना है, तो फिर जब बोलना है और दूसरों को समझाना है तब पढ़ने की क्वालिटी और अपने पढ़ने की, रोज की मुरली आ रही है हमने पढ़ा, अगर कहा कि ये मुरली को रिवाइज करानी है या कुछ कराना है इसका, या इसमें से प्रश्न निकालने हैं आपको, 10 प्रश्न निकालने हैं, तो 10 प्रश्न निकालने होते ही पहली लाइन से ही प्रश्न मन में आते रहता है कि कुछ तो इसमें से प्रश्न होगा, कुछ तो है इसमें, तो अटेंशन की क्वालिटी बढ़ जाती है, लेवल ऑफ अवेयरनेस, सजगता, जागरूकता। बस धर्म अर्थात धर्म की परिभाषा ही जागरूकता है। धर्म ये नहीं है ये अच्छा है ये बुरा है, वो ऐसा है ये वैसा है, जागरण। धर्म अर्थात जागरण, अवेयरनेस, रीअवेकनिंग, हर चीज जागरण की अवस्था में करना। वो जागरण ही ये नहीं कि ये करना नहीं है वो करना नहीं है, वो जागरण की अवस्था में जो कुछ होता है सबराइट ही होता है, जो गलत होता है वो मूर्छा की अवस्था में होता है, विस्मृति में। स्मृति स्वरूप है तो फिर ये सोचने की जरूरत नहीं ये व्यक्ति मिला वो हुआ तो ये क्या करेंगे, ये परिस्थिति आई। जागरण की अवस्था में अपने आप जीसस क्राइस्ट के शिष्य उसके पास आते हैं, कहते हैं हम क्या बोले, वो कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ, वो कहते हैं हम बोले कि हमको पता ही नहीं, हमको तो आपने सिखाया नहीं क्या बोलना है। वो कोई स्पीकर थोड़ी थे, कोई कुछ काम करने वाला था, कोई मच्छी पकड़ने वाला था, कोई दुकान वाला था, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई ऐसे ही बैठा था आवारा घूमने वाले, सब ऐसे लोग थे। वो कह रहा है कि जाओ मेरा संदेश विश्व को सुनाओ, उन्होंने कहा कि हम क्या सुनाए, हमको पता ही नहीं क्या सुनाना है। बाइबल में वाक्य आता है इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर, ये तुम्हें दिया जाएगा, तुम बस जाकर खड़े हो जाओ, क्या बोलना है और क्या करना है, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस, सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले भगवान को पालो उसका राज्य, एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू ऑल अदर थिंग्स, बाकी संसार की सारी चीजें स्वतः ही उसमें ऐड होती जाएगी, सारे टैलेंट्स, सारी स्पेशलिटी, सब कुछ। पहले इधर लाइन क्लियर, तो ये सारी बहुत छोटी चीजें सब आ जाएगी। तो जागरण, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात जागरण। अभी लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है बहुत कम है, ये बढ़ जाए। जैसे उस दिन भी बताया था ना, अगर एक वुड, एक लकड़ी का ऐसा एक क्या कहेंगे उसको, लॉग ऑफ वुड अगर रखा जाए ऐसी लकड़ी और उसके ऊपर चलने को कहा जाए तो आराम से चलते हैं, नीचे रखी हुई है। अगर वही लकड़ी, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ऐसी और दूसरी बिल्डिंग ऐसी, उसके ऊपर रखी हुई है और कहा तब चलो ऊपर से, तो क्या अंतर है नीचे के, यहां रखी हुई पे चलने में और ऊपर के चलने में? अटेंशन, एक लकड़ी यहां रखी है, यहां कोई डर ही नहीं है गिरने का, आराम से चल रहे हैं। परंतु जब ऊपर रखी जाती दो बिल्डिंग्स के बीच में और नीचे बहुत सारी 10वीं मंजिल की बिल्डिंग है सपोज, अब कैसे चलेंगे, कितना एक एक कदम फूक फूक के, क्योंकि एक थोड़ी सी गलती हुई और जीवन गया। लेवल ऑफ अवेयरनेस वहां पर बहुत ज्यादा है, यहां पर लेवल ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है। एक गुरु, एक शिष्य, एक किसी ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि मैं अपने गुरु के पास गया ध्यान सीखने के लिए, अटेंशन सीखने के लिए। तो उसने क्या किया, मुझे कहा कि वो एक कौन सा झाड़ होता है, डेट को कौन सा झाड़ कहते हैं, खजूर का, बहुत ऊंचा होता है ना, लंबा लंबा लंबा। उसने कहा चढ़ उसके ऊपर, और मैं चढ़ता गया थोड़ा चढ़, उसने कहा और चढ़, इतना ऊपर चढ़ गया, वो चढ़ने में तो कोई मुश्किल नहीं हुई। और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं यहाँ पर नीचे, कुछ भी हुआ तो मैं देख लूंगा तुमको। वो इतना ऊपर चढ़ जाता है और वो ऊपर चढ़ने के बाद फिर उसको शिष्य को कहता है अब उतर नीचे, वो शिष्य कहता आप बिल्कुल वहीं रहना, कुछ मैं अगर गिरा तो बिल्कुल मेरे तरफ देखना। तो गुरु कुछ ध्यान भी नहीं देता, इधर उधर बाहर जाके बैठ जाता है। तो उसको कहता है उतर, वो इतना बिल्कुल अभी गिरा, अब गिरा तब गिरा, नीचे देखता है तो बाप रे इतनी बड़ी, इतने से भी गलती हुई तो गया, और देखता है गुरु तो ये धोखेबाज निकला। पहले तो कहा था कि मैं पूरा ध्यान रखूंगा तुम्हारा, तो ये तो बिल्कुल वहां है ही नहीं, ये तो वहां गया, वो उधर जाके झाड़ के कहीं जाके बैठा हुआ है आराम से अपना कुछ कर रहा है। तो वो एकदम से बिल्कुल नीचे 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 आता है, और बस जब थोड़ा सा ऊपर रहता है तब गुरु आ जाता है और बोलता है अरे सब ठीक तो है ना, ध्यान से ना आराम से, ये इधर हाथ रखो उधर पैर रखो, और फिर नीचे उतरता है। वो शिष्य कहता है मैंने अभी आप क्यों पूछ रहे हो, मुझे पूछना तो चाहिए था तब जब मैं ऊपर था। गुरु कहता है तब पूछने की जरूरत ही नहीं। तब तुम्हारा अटेंशन का जो लेवल था ध्यान का वो इतना ज्यादा था कि किसी की आवश्यकता नहीं तुम्हारी, तुमको देखने की या बचाने की या समझाने की या कुछ बताने की। ध्यान तो तब रखना होता है जब तुम नीचे आ गए, वहां पर गिरने के चांसेस ज्यादा है। इसके लिए जीवन में जो भी परिस्थिति आती है ना, उनका एक ये फायदा भी है, उस टाइम में अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। जब धोखा हो जाता है तब अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब मिसट्रस्ट, कोई अविश्वास दिखाता है, असहयोग करता है, निंदा करता है, ग्लानी करता है, अपमान करता है, या इस तरह की जो भी चीजें होती है, लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है आत्मा की बढ़ जाती है उस समय। परंतु हम उससे सीखने की बजाय, उस लेवल ऑफ अवेयरनेस में स्थित होने की बजाय परिस्थितियों को दोष देकर निगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, ताकि उससे सीखना भी नहीं होता है फिर। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? अवेयरनेस, डीप अवेयरनेस, लेवल ऑफ अवेयरनेस। और अगला पॉइंट विजुअलाइजेशन। उस दिन भी कह रहे थे कि जो लक्ष्य रखा है उसको बार बार विजुअलाइज करना है, आंखों के सामने देखना है, कलर भरने है उसमें, रंग भरना है उसमें, चलता फुरता मेंटल मूवी क्रिएट करनी है एक, ये मैं हूं ना, तो ये मैं उसको देखना, वो चल रहा है, पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, विजुअलाइजेशन, सब कुछ भर भर देना है उसमें, और देखना है कि ऐसा वास्तव में हो रहा है। जो भी चीजें हैं पहले ब्लूप्रिंट, और जो भी सोचेंगे चाहे वो कितनी भी काल्पनिक भी क्यों ना हो, कितनी ही काल्पनिक और असत्य क्यों ना हो, वो अगर देखी जाए तो वो सत्य होगी। यही यूनिवर्सल सिद्धांत है। कोई कितना भी गरीब है केवल अमीरी के बारे में सोचता रहे और संकल्प करे कि मैं अमीर हूं तो एक दिन बन जाएगा वैसे ही। ये सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांत है। और विजुअलाइजेशन, प्लानिंग चाहिए, बहुत अच्छी प्लानिंग, शॉर्ट प्लानिंग, बहुत ऐसी लंबी प्लानिंग में 10 पॉइंट्स की, थोड़ी सी 2 पॉइंट 3 पॉइंट छोटी सी प्लानिंग, एक एक दिन की प्लानिंग, एक एक घंटे की प्लानिंग, जैसे आज की प्लानिंग 6 बजे से लेकर तो शाम को 6 बजे तक, ये इतना पीरियड में कम से कम वो चीज नहीं करूंगा जिसे छोड़ना है। छोटे छोटे लक्ष्य, लिटिल बाय लिटिल, बिट बाय बिट, धीरे धीरे, हर चीज धीरे 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 संपन्नता की ओर जाती है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा भी किया हुआ जमा होते जाता है। थोड़ा सा ज्ञान चिंतन, बड़े बड़े विकर्मों से बचने के लिए थोड़ा सा ही ज्ञान चिंतन की जरूरत है। जितने जिन्होंने व्यक्तियों ने विकर्म किए, पाप, जेल में अगर जाओ और उनको कहो कि उस समय, वो कहते हैं बस उसी समय वो संकल्प आ गया, बस 10 मिनट, उस 10 मिनट की वजह से 10 साल की सजा। अगर उस 10 मिनट में श्रेष्ठ ज्ञान का संकल्प आ गया होता तो वो विकर्म होता ही नहीं था। छोटे छोटे पावरफुल, शक्तिशाली विजुअलाइजेशन, संकल्प, रीइन्वेंट करना है, इन्वेंट रीइन्वेंट, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में और क्या कर सकते हैं? संघ, जैसे कहा कि श्रेष्ठ समान पुरुषार्थियों का संघ, जिनका सेम लक्ष्य है उनके साथ ज्यादा रहना। जिनका ब्राह्मण बनने के बाद लक्ष्य ये है ही नहीं कि पुरुषार्थ अच्छा करना है, जिनके लिए सारी चीजें साधारण सी है, मुरली और ये वो, उनका संग खतरनाक है। तेजी से नीचे लाने वाला है, क्योंकि शायद वो पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे, ठीक है, परंतु उनके पूर्व तक यह हुआ पुरुषार्थ उनके साथ है और हमारा कुछ खास साथ में नहीं है, और हमारे खतरनाक संस्कार पीछे बैठे हुए हैं, शायद उनके उतने नहीं है। इसके लिए उनसे हमको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गिरने के चांसेस उनसे अधिक है। इसलिए तो संग और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ वो तो हो गया ना, लक्ष्य को अच्छा लगा के सामने रख दो। आठ, समय। आठ, एनर्जी। एनर्जी क्या, एनर्जी एनर्जी का क्या करना है, दृढ़ता। आठ, और एक चीज महत्वपूर्ण है ट्रांसफॉर्मेशन में, पास्ट से हमारा बहुत लगाव है, एक एनर्जेटिक कॉर्ड है जिसने हमको बांध के रखा है आत्माओं के साथ, एक धागा कहो एक रस्सी कहो, कुछ आत्माओं के साथ हमको बांध के रखा है। वो बांधना जो हो सकता है घृणा के कारण, बदले के कारण भी हो सकता है, उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, हमने माफी नहीं किया उस आत्मा को। इसके लिए एक इनविजिबल कॉर्ड है उसके और मेरे बीच, और उसने मुझे बांध रखा है, और उसके वजह से मैं आगे नहीं जा सकता। फिर अपमान किया है, धोखा दिया है, ध्यान नहीं दिया है, असहयोग दिया है, कुछ और किया है साथ में, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उस आत्मा की एकदम स्पष्ट स्मृति है कि इसने ऐसा किया है मेरे साथ। ऊपर से हम तो कहते हैं हम शुभ चिंतक है, परंतु कॉर्ड है एक इनविजिबल एनर्जेटिक कॉर्ड, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इनविजिबल एनर्जेटिक कॉर्ड, जो हमारी एनर्जी को पुल करता है, खींचता है। तो उन आत्माओं को हमें मुक्त होना होगा उनसे, ये बहुत ही इनविजिबल इमोशनल लेवल पे सारा कुछ है, क्योंकि हर आत्मा जैसी दिख रही है इतनी सिंपल नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कॉम्प्लेक्सेस है अंदर। हमारे पास कितनी सारी बहनें और भाई और ये लोग आते हैं, वो सब इतना अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, पर खुद ही कहते हैं हम दुनिया को सुनाते हैं और सब अच्छा है, परंतु हम खुद डिस्टर्ब है कोई ना कोई कारण से। ज्ञान तो बहुत है, कल भी एक बहन जी कह रहे थे ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्ञान सब स्पष्ट है और सारी पॉइंट्स है, सुनाते हैं, अच्छा अच्छा क्लास कराते हैं, सब कराते हैं, परंतु आंतरिक डिस्टर्बेंस है। लिटिल बाय लिटिल करना चाहिए ग्रहण, धीरे 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 हर चीज जो है ना बहुत, क्योंकि ये जल्दी वाला नहीं, एक व्यक्ति के कितने रूप है, एक तरफ बहुत अच्छा योगी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, वक्ता है, सब है, परंतु दूसरी तरफ वही व्यक्ति भयभीत भी है अंदर से, वही व्यक्ति असहाय महसूस करता है, वही व्यक्ति एक तरफ चाहता है कि मुझे अकेला अकेला लग रहा है, एक तरफ तो हम चर्चा कर रहे हैं परमात्मा हमारे साथ है, निरंतर वो साथ चलता है, उसकी छत्र छाया, और उसी 24 घंटे में 10 मिनट अकेलापन कि मैं अकेला हूं, कोई मुझे चाहिए, असहाय हूं, कोई भी साथ नहीं है, कितनी पड़ते हैं चेतना पर, पड़ते ही पड़ते हैं, पड़ते ही पड़ते हैं, पड़ते ही पड़ते हैं। और सबसे पहली पॉइंट जो कही थी ट्रांसफॉर्मेशन में, स्वयं को स्वीकार करना, अगर ये मेरा श्रेष्ठतम स्वरूप सत्य है तो ये जो निम्नतम है ये भी मैं ही हूं, ये भी उतना ही सत्य है जितना कि वो, ये दोनों अपने दोनों ही तल को स्वीकार करना, दोनों ही लेवल को, दोनों ही साइड्स को, कि ये अगर मैं हूं जिसे एकदम एकांत प्रिय है, तो ये दूसरी तरफ मैं भी हूं, ये भी मैं ही हूं जो एकदम खोया हुआ है संसार की बातों में, बोलने पर कंट्रोल ही नहीं, ये भी मैं ही हूं, एक तरफ है कि बोलने की इच्छा नहीं, दूसरी तरफ ये है कि रोकने की कंट्रोल, रोकने का कंट्रोल नहीं, पढ़ते हैं बहुत सारी। वैराग जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया वैराग, एक दिन में वैराग राग, वैराग राग, वैराग राग, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य बैलेंस रखा हुआ है, अच्छा बुरा, पॉजिटिव भी संकल्प आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, एक तरफ तो विश्व के प्रति शुभ चिंतन, दूसरी तरफ निगेटिव भी आते हैं, ये इसने मेरे साथ ऐसा कि अपने आप की ही स्टडी करनी है, अध्यात्म अर्थात सेल्फ स्टडी। और एक चीज है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, सेल्फ लव चाहिए, हमारा स्वयं के प्रति ही बहुत नफरत है अंदर, अपने अंदर जो बुराई है उसके, उसको भी स्वीकार करना है, यदि ये मैं हूं तो ये भी मैं ही हूं, हम सबसे प्रेम करते हैं परंतु स्वयं से नहीं करते, स्वयं को हमने रिजेक्ट कर रखा है अंदर से, एक सूक्ष्म नफरत है, हमने शायद जो भी किया उसके प्रति भी नफरत है। एक रीति से फायदा कर रही है वो, परंतु वो निगेटिव एनर्जी है। फिर भी पहले तो सेल्फ लव चाहिए कि स्वयं को मैं जो हूं, मैं जैसा हूं स्वीकार करता हूं, विथ ऑल इम्परफेक्शंस, विथ ऑल परफेक्शंस, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं वो है, क्योंकि वो था तो मैं ही ना, चाहे भिन्न भिन्न परिस्थितियों ने उसको बाहर निकाला पर था मैं ही, इसके लिए वो भी चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर सभी चिंतन कर सकते हैं। संपूर्ण परिवर्तन, कौन कौन सी पॉइंट्स बताई हमने, फिर से रिवाइज, पहले तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा धक्का रियलाइजेशन, रियलाइजेशन को धक्के से अच्छा, फिर पॉजिटिव कंपैरिजन, फिर संघ कंपनी, फिर अटेंशन, अटेंशन भी संपूर्ण अटेंशन, और अटेंशन ऐसी चीजें कर लेना है कि जिससे अटेंशन बढ़ जाए, जबरदस्ती कर लेना ऐसी चीजें, हाँ ऐसी चीजें करना है कि जिससे अटेंशन बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल मुरली पढ़ना, वरदान पढ़ा, अब ऐसे पढ़ो कि जैसे ये वरदान मुझे किसी को सुनाना है 10 मिनट के बाद, कितना ज्यादा अटेंशन होगा, 10 मिनट के बाद ही किसी को समझाना है तो ज्यादा अटेंशन, अटेंशन बढ़ जाएगा उसमें। वो मार्क ट्वेन ने लिखा हुआ है, वो और उसके मित्र बचपन में जाते थे, बहुत यात्राएं करते थे, एडवेंचर्स, उसने किताब भी लिखी ना एडवेंचर्स ऑफ सैम, तो इस तरह से हकलबरी फिन, अलग अलग अलग, तो उसने अपने लिए लिखा है कि जाते थे बहुत सारे मित्र मिलकर, फिर दीवार आ जाती थी बीच में, अब इतना कौन कूदेगा उस दीवार को, सब एकदम आलसी हो जाते थे दोस्त, फिर क्या करते थे अपनी अपनी टोपी निकाल के उधर फेंक देते थे, अब कूद नहीं है नहीं तो टोपी कहां से मिलेगी तो कुछ कुछ चीजें स्वयं को जबरदस्ती करा लेनी, जबरदस्ती करना ही है, बस संकल्प कर लिया, दो बार ये करना है, हमेशा एक बार करते हैं आप समझ लेना, दो बार पनिशमेंट ये करनी है। लोग अमृत वेला मिस हो जाए तो पनिशमेंट क्या देते हैं, आज नाश्ता नहीं करेंगे, ये स्वयं को पनिशमेंट देते हैं, ऐसे भी है ना, और फिर दोपहर में टूट पड़ते भोजन पर ऐसी पनिशमेंट नहीं देना, पनिशमेंट ज्ञान योग की पनिशमेंट स्वयं को देना है कि अभी बाबा के कमरे में जा रहा हूं ना, एक घंटे के अंदर तक निकलूंगा ही नहीं यहां से, चाहे जो करना है करो अंदर, क्यों करेगा, जो भी करना है इतना ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि वो स्मृति भी तो रहेगी क्यों बैठा हूं। तो ज्ञान योग से संबंधित पनिशमेंट देनी है स्वयं को, सेल्फ पनिशमेंट, कि अभी जबरदस्ती चिंतन करना ही है एक टॉपिक पर, चाहे कुछ भी हो जाए, 50 पॉइंट तो निकलने चाहिए, 10 निकलेंगे 20 निकलेंगे फिर बहुत हो गया, बाप रे भारी हो रहा है दिमाग, परंतु करना है, कुछ कुछ चीजें जबरदस्ती करनी होती है, जबरदस्ती। मेडिकल में हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले और इतनी चीजें याद रखनी पड़ती थी, इतना ये लगता था ये कौन करेगा ये सब सब नई नई बातें थी और इतना कुछ लगता था, परंतु जो दोस्त लोग होते थे जब उनको देखते थे, अरे इसको ये भी पता है वो भी पता है, फिर वो मंगाता कि हमको भी पता रहना चाहिए, वो डिस्कशन जब करते थे तब कोई इंटरेस्ट आता था, नहीं तो अकेले पढ़ते रहो तो पूरी नींद ही नींद, भयंकर नींद कुछ समझ नहीं आते, पढ़ लिया पूरा चैप्टर कंप्लीट, एक चैप्टर पढ़ लिया 15-20 पेजेस का 30 पेजेस का, और उसके बाद में कोई पूछे एक प्रश्न उसके ऊपर तो कुछ भी पता नहीं, क्यों क्या पढ़ा हमको ही नहीं पता, तो अवेयरनेस लेवल नहीं था हाइटेंड, और जबरदस्ती और स्वयं को झोंक देना है उसमें, क्योंकि ये माइंड जो है ना उसको ऐसी उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे उसको डुबोना पड़ता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है ऐसी गर्दन पकड़ना है और ऐसे डुबोना है उसको, वो तो डूबना ही नहीं चाहता उसे थ्योरेटिकल नॉलेज है कि डूबना है पर चाहता नहीं है, उसको जबरदस्ती करना होता है कुछ कुछ चीज। कंफर्ट जोन, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ऐसे पथ पर चलना चाहता है कि जहां बिल्कुल भी कोई कांटे नहीं है, कोई कुछ बोले नहीं, आराम से बिल्कुल निकल जाए राजपथ का चाहता है, माइंड को राजपथ चाहिए, परंतु ये कटीली पगडंडी है, वहां से गुजरना है तो ज्यादा अनुभव आएगा। तो और इस पर चिंतन कर सकते हैं, संपूर्ण परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ओम शांति।